सृजन सैनिकों को दिशा निर्देश। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
परावलंबी न बने।
देवियों, भाइयों, आपको बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको केवल एक ही प्रवचन करने का मौका मिलेगा, खासकर वहां जहां की अगले दिनों हमारी तीर्थयात्राएं शुरू होने वाली हैं।
हमारा अगला कार्यक्रम तीर्थयात्राओं का है जिसका संचालन आप लोगों को करना है।
यह कार्यक्रम परावलंबी है।
कौन सा वाला? जिसके लिए हम आपको भेज रहे हैं।
वहाँ कोई आदमी स्टेज बनाकर रखे, शिविर बनाकर रखे, प्रचार करके रखे, माइक लगाकर रखे और आपके लिए ठहरने का इंतजाम करके रखे, इसका क्या मतलब हुआ?
यह तो ऐसे हुआ जैसे कोई जमाए अपने साले के यहाँ, ससुराल वाले के यहाँ जाते हैं और मटक कर बैठ जाते हैं। इसमें आपका कोई गौरव नहीं है और आपकी कोई शान नहीं है। किसी आदमी ने आपको बुलाया और आप फूलमाला पहनने के लिए और जुलूस निकलवाने के लिए वहां जा पहुंचे। आपकी क्या महत्ता रही और क्या आपकी विशेषता रही? आपकी कोई विशेषता नहीं रही और आपकी कोई महत्ता नहीं रही।
मित्रों,
अभी तो हम आपको विद्यार्थी मानते हैं और जहां कहीं भी कुछ आयोजन किए जा रहे हैं वहीं हम भेज रहे हैं, पर इसमें आपका कोई गौरव नहीं है, आपकी कोई महत्ता नहीं है, आपकी कोई गरिमा नहीं है, आपका कोई श्रेय नहीं है। सारा श्रेय उन लोगों का है जिन लोगों ने आपको बुलाया है, जिन लोगों ने महीनों से मेहनत की है और पाई पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा किया है, जिन्होंने तैयारियां की और जिन्होंने पसीना बहाया। अगर श्रेय दिया जाएगा तो उनको दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा।
आप स्टेज पर व्याख्यान दे करके आए और अपना नाम छपा दें, फोटो छपा दें कि स्वामी शंकरानंद जी वहां गए थे और स्टेज पर व्याख्यान दे करके आए। मित्रों,
यह शंकरानंद जी की महत्ता है या उसकी महत्ता है जो 3 महीने भर से पसीना बहा रहा है, इसलिए फोटो छपना चाहिए तो उसका छपना चाहिए जो मेहनत कर रहा है। गौरव और गर्व भी उसी का है।
मित्रों,
गौरव और गर्व प्राप्त करने के लिए आपको वह काम करना पड़ेगा जो कि भगवान बुद्ध के शिष्यों ने किया था और प्राचीन काल के प्रत्येक महापुरुष के शिष्यों ने किया था।
बुद्ध ने अपने शिष्यों को बाहर भेज दिया,
ऐसी जगह भेजा जहां कोई भी रास्ता नहीं था और जहां खाने पीने का इंतजाम भी नहीं था,
जहां बोली भाषा का इंतजाम भी नहीं था।
उस जगह वे चले गए और वहां जा करके गांव-गांव में, जहां न उनकी कोई जान पहचान थी और न बोली भाषा का परिचय था, अपनी क्षमता के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा वहां स्थान प्राप्त किया।
स्थान प्राप्त करके वे वहां रुके, बैठे और लोगों को समझाया और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और फिर आगे चले गए। मित्रों,
आपको भी वही काम करना पड़ेगा। हम आपको कठिन परीक्षाओं में डालना चाहेंगे और आपको परावलंबी नहीं रहने देंगे।
स्टेज पर व्याख्यान देने वाला परावलंबी आदमी, कमजोर आदमी, बेअकल आदमी, जो पराए बनाई हुई स्टेज पर धमक जाता है, लेकिन वह व्यक्ति स्वावलंबी है, मेहनतकश है, पुरुषार्थी है, पराक्रमी है, जिसने कहीं दूसरी जगह जा करके अपना स्थान बनाया, जहां प्रकाश नहीं था, रोशनी नहीं थी, जहां हमारे मिशन की जानकारी नहीं थी, जहां हमारा क्षेत्र नहीं था, वहां आप चले गए।
वहां जा करके आपने एक नया कार्यक्रम खड़ा कर दिया और नई जानकारी खड़ी कर दी और नई शाखा खड़ी कर दी और नया प्रकाश खड़ा कर दिया। आपका पुरुषार्थ इसी कसौटी पर कसा जाएगा, इससे कम पर नहीं।
तीर्थयात्राओं के कार्यक्रम। इसलिए मित्रों, हमारे कार्यक्रम अगले वर्षों से जो वानप्रस्थों को सौंपे जाने वाले हैं, वे तीर्थयात्राओं के कार्यक्रम सौंपे जाने वाले हैं।
शिविरों में व्याख्यान करने के लिए चूंकि अभी आपको अभ्यास नहीं है और आप कभी इस क्षेत्र में गए नहीं हैं, इसलिए आपको नौसिखिए के रूप में, सिखाने वाले के रूप में और जानकार के रूप में केवल वहां भेजते हैं जहां हमारी 6000 शाखाएं हैं, जहां लोगों ने इस साल सम्मेलन करने की और आयोजन करने की व्यवस्था कर रखी है।
सिर्फ इस साल के लिए आपको भेजते हैं, किंतु अगले वर्ष की उम्मीदें आप मत कीजिए कि फिर से हमको स्टेज पर बिठाया जाएगा, फिर हमारा स्वागत होगा और फिर माला पहनाई जाएगी। आपको यह शोभा नहीं देगा। अगली बार के लिए नए विद्यार्थी आएंगे, नौसिखिए आएंगे और उन्हें वहां भेजा जाएगा।
इसके बाद में जो आदमी परिपक्व बुद्धि के हो जाएंगे, जिनके अंदर में प्रभाव और प्रतिभा उत्पन्न हो जाएगी कि वे कहीं नई जगह पर जा करके नया घोंसला बना सकते हैं और नया कुआं खोद करके नया पानी पी सकते हैं, उनको वहां भेज देंगे। जब आपकी संज्ञा और आपकी स्थिति उन्हीं लोगों में हो जाएगी, तब हम आपको वहां भेजेंगे।
कहां?
जहां विनोबा भावे के तरीके से आपको विभिन्न स्थानों की पदयात्राएं करनी है।
मित्रों, पदयात्रा करना अगले वाले समय का हमारा मुख्य क्रियाकलाप है। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं और अभी हमारी 6000 शाखाएं हैं।
6000 शाखाएं 7 लाख गांवों में किस तरीके से प्रकाश फैला सकती हैं? 6000 शाखाएं क्या होती हैं? पानी के बूंद के बराबर होती हैं। समुद्र में हम 6000 शाखाओं में ही बात करते रहेंगे, तो बात किस तरीके से बनेगी? आपको दो दो व्यक्तियों के जोड़े के रूप में तीर्थयात्रा करने के लिए भेजने वाले हैं।
इसकी थोड़ी सी रूपरेखा एक दिन पहले ही हमने आपको बता दी थी। बाहर एक बैलगाड़ी रखी हुई है, आपने देखी होगी।
यह आपको दिखाने के लिए रखी है। आपके लिए बिस्तर, हवन करने की सामग्री, चार्ट, प्रोजेक्टर की जरूरत हो तो वह, हारमोनियम बाजे की जरूरत हो तो वह, नहाने के लिए दो बाल्टियां, मिट्टी के तेल की बत्ती तथा दूसरी आवश्यक चीजें हम देंगे। इसे आप बैलगाड़ी में लेकर के जाएंगे।
मित्रों,
हम बैल कहाँ से लाएंगे? आजकल 20 रुपये रोज पर बैल आते हैं। क्या भाव हो गया?
4 रुपये किलो तो आजकल दूध आता है। 1 रुपये में 1 पाव दूध। अगर आपको बाजार में 1 पाव दूध लेना हो तो 1 रुपया निकालिए, तब वह एक छोटे से कुल्हड़ में 3.5 छटांक दूध आपको दे देगा।
यह महंगाई का जमाना है। 20 से 30 रुपये रोज से कम में आज आपको बैल नहीं मिलेंगे और गाड़ी को चलाने वाला भी 5 से 6 रुपये रोज से कम में नहीं मिलेगा। अगर कभी आपकी उससे लड़ाई हो गई तो वह आपकी बैलगाड़ी ले करके चल पड़ेगा और आप जहाँ के तहाँ बैठे रहेंगे। इस तरह वह आपका सारा प्रोग्राम ही ठप कर देगा।
इसलिए हमको स्वावलंबी क्रियाकलापों को लेकर के चलना पड़ेगा। मित्रों,
बैलगाड़ी का एक छोटा सा नमूना हमने आपके लिए इसलिए बनाकर रखा है कि अगले दिनों आप में से 2 आदमी होंगे और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ से कम 6 और अधिक से अधिक 8 आदमी ले लीजिए और विनोबा भावे के तरीके से पदयात्रा कीजिए।
प्राचीन काल में ऋषि मुनि कंधे पर गंगा जल रख करके कांवड़ निकालकर चलते थे।
लोग जत्थे बना करके तीर्थयात्रा के लिए एवं गंगा का जल शंकर जी के ऊपर चढ़ाने के लिए निकलते थे।
आपको उसी तरह के कार्यक्रम बनाना चाहिए।
इसके लिए ज्यादा दिन के कार्यक्रम हो सकते हों तो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन 15 दिन के लिए बनाए तो अच्छा है।
15 दिन के लिए 5-5 मील पर विराम दें। विनोबा भावे के विराम 10-10 मील पर होते थे, जिससे वे एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर ठहर जाते थे।
हमको प्रत्येक गांव में अपना कार्य करना है।
जहां भी रास्ते में 2 गांव आए, 3 गांव आए, उन सब में 1-1 घंटे का कार्यक्रम रखना पड़ेगा।
अलग है हमारा मिशन।
मित्रों,
मैंने कल आपको बताया था कि वहां जा करके आपको एक प्रभात फेरी के रूप में, गायन के रूप में, छोटे से जुलूस के रूप में गांव में निकालना पड़ेगा, ताकि हर आदमी को यह मालूम पड़ जाए कि युग निर्माण नाम का मिशन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और व्यक्ति निर्माण करने के लिए, परिवार निर्माण करने के लिए चला है। लोगों को मालूम भी नहीं है, अतः इससे उन्हें पता चल जाएगा। जो इस तरह के भावनाशील आदमी हैं, वे हम तक नहीं आ पाते और हमें भी मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ ऐसे विचारशील और भावनाशील लोग हैं जो हमारे मिशन से सहयोग रख सकते हैं। किसके विचार हमसे मिलते जुलते हैं, ऐसे लोगों की जानकारी हमें बिल्कुल नहीं है, जबकि लोगों को भी हमारी जानकारी नहीं है। ऐसे में दोनों का आपस में संबंध सूत्र तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपस की जानकारियाँ बढ़ेंगी नहीं। तब तक हम तो यही तलाश करते रहेंगे कि इस तरह के आदमी कहाँ हैं। लोगों को भी यह मालूम नहीं हो पाएगा कि कोई इस तरह का मिशन है।
मित्रों,
हमारी जैसी संस्थाएं हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में भरी पड़ी हैं। कहाँ कहाँ भरी पड़ी हैं? लोगों ने कागज छाप छाप करके और लेटर पैड छाप छाप करके और साइन बोर्ड बना करके जगह जगह लगा रखे हैं। हर आदमी की तमन्ना और हर आदमी की ख्वाहिश अपने देश में यही है कि बस मेरी संख्या बड़ी हो जाए, मेरा नाम हो जाए। मेरा नाम होने की ख्वाहिशों ने हमारे देश में सब बिखेर डाला, सत्यानाश कर डाला।
मंदिरों की हालत देखिए।
सबकी यही ख्वाहिश रहती है कि मेरा मंदिर बन जाए और मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम चल जाए।
हर आदमी ने गांव-गांव में मंदिर बनाकर खड़े कर दिए।
उन्होंने न तो यह इंतजाम किया कि पुजारी कहाँ से आएगा, मंदिर का भोग कहाँ से लगेगा,
बस मेरा मंदिर बन जाए।
5000 रुपये को मिट्टी में झोंक दिया और एक तमाशा खड़ा कर दिया। 1-2 महीने पूजा पाठ हुआ, फिर पूजा पाठ भी बंद हो गया।
खर्च पूरा नहीं हो सका, पुजारी मिले नहीं, देख माइनस भाल हुई नहीं। बस उसके किवाड़ों को चोर उखाड़ ले गए, मूर्ति को भी चोर उठा ले गए, मंदिर ऐसे ही टूट फूट कर बर्बाद हो गया। मित्रों, ऐसे मंदिर आपको देखना हो तो आप मथुरा वृंदावन चले जाना। मथुरा वृंदावन में क्या हो गया?
हजारों ऐसे मंदिर पड़े हुए हैं जिन पर यह बोर्ड लगे हुए हैं, रिपेयर बाय म्यूनिसिपल बोर्ड, जिसमें कुत्ते टट्टी किया करते थे और चमगादड़ों ने अपना डेरा जमाया हुआ था। मूर्तियों के ऊपर कुत्ते पेशाब किया करते थे, बंदर पेशाब किया करते थे।
उन स्थानों पर म्यूनिसिपल बोर्ड ने किवाड़ तो लगवा दिए, सफाई करा दी और ताला लगवा दिया।
पर ये स्थान गालियां किन लोगों को देते हैं? ये उन लोगों को गालियां देते हैं जिन लोगों के ऊपर यह सनक सवार थी और यह हवस हावी हो गई थी कि हमारा नाम चलना चाहिए।
अपनी अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी हर आदमी पका लेता है,
मंदिर बना देता है, मस्जिद बना देता है, धर्मशाला बना देता है और इस तरह टूटी फूटी बेकार बेबुनियाद चीजों को बिखेरते हुए चला जाता है।
मित्रों,
यह हवस लोगों के ऊपर इस कदर हावी हो गई है कि मेरे नाम की एक संस्था तो हो ही जाए और मैं भी स्वामी दयानंद हो जाऊं।
मैं गुरु गोलवलकर हो जाऊं और मेरा भी यश चले।
इसलिए हर आदमी यह कोशिश करता है कि मेरे नाम की कमेटी तो जरूर बन जानी चाहिए,
मेरे नाम की संस्था तो जरूर बन जानी चाहिए, मुझे तो संस्थापक बन ही जाना चाहिए। इसलिए मित्रों,
हिंदुस्तान के बराबर वाहियात बेबुनियाद और निकम्मी और निथलनी संस्थाएं और कहीं नहीं हैं। ये इतनी ज्यादा भरी पड़ी हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते।
सारी दुनिया में जितनी कमेटियां और संस्थाएं होंगी उससे ज्यादा कमेटियां और संस्थाएं आपको हिंदुस्तान में मिलेंगी।
यह कौन सी बीमारी है? यह बड़ी सड़ी हुई बीमारी है, बड़ी वाहियात और बड़ी गंदी बीमारी है। हर आदमी इस बात के लिए व्याकुल हो रहा है कि मेरा नाम हो जाए और मेरा यश फैल जाए। नाम और यश प्राप्त करने के लिए आदमी को जो परिश्रम करना चाहिए, लगन और त्याग करना चाहिए, योग्यता बढ़ानी चाहिए, उसका तो नाम ही नहीं है। बस छिटपुट खेल खिलवाड़, खेल खिलौने इकट्ठे कर लेता है और अपना खेल बनाकर खड़ा करके रख देता है।
इसलिए मित्रों,
हिंदुस्तान में संस्थाओं का क्या कहना, इससे लोगों को बेकार का भ्रम और बेकार की उलझने पैदा होती हुई चली जाती हैं। उलझन और भ्रम पैदा होता हुआ चला जाता है कि कौन संस्था देश के लिए काम कर रही है। ऐसे ऐसे बढ़िया नाम हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया साइन बोर्ड हैं, ऐसे बढ़िया कागज हैं कि देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, लेकिन इनमें खोखलेपन के अलावा कुछ है ही नहीं। इस तरीके से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है।
ये संस्थाएं थोड़ी होती, दो पांच हों तो शायद लोगों को जानकारी हो भी जाती। अमेरिका में राजनीतिक दलों की संख्या दो है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी।
दो के अलावा तीसरी और कोई पार्टी नहीं है।
इंग्लैंड में भी एक लेबर पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी। पहले दो तीन पार्टियां थी, कंजर्वेटिव पार्टी तो खत्म ही हो गई।
यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को आप देखें और उनके नाम गिने तो सैकड़ों की संख्या में आपको मिलेंगी।
पांच सात को तो आप जानते ही हैं।
वे तो प्रख्यात हैं ही, जिनको आप नहीं जानते हैं उन राजनीतिक संस्थाओं को आप देखें तो हजारों की संख्या में जा पहुंचती हैं।
मित्रों,
यही बात धर्म के बारे में है। लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सी संस्था ऐसी है जो वास्तव में देश का राष्ट्र का वास्तविक मार्गदर्शन करने में सक्षम है। लोग बहुत गुमराह होते हैं इन संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं है कि अध्यात्म का, धर्म का और आस्तिकवाद का वास्तविक रूप जो ऋषियों वाला था उसको पुनर्प्रतिष्ठापित करने में कौन सी संस्था समर्थ है।
इसलिए मित्रों,
हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अंधाधुंध बढ़ते इन बरसाती मेढकों के बीच न हमको यह मालूम है और न लोगों को यह मालूम है कि असलियत कहाँ है और नकलीपन कहाँ है, विवेकशीलता कहाँ है, बुद्धिशीलता कहाँ है, दिशाएं कहाँ हैं, प्रकाश कहाँ है। हमें भी नहीं मालूम है कि सही लोग कहाँ हैं, लोगों की कमी कहाँ है।
गांधी जी ने एक नारा लगाया था और लोगों को बुलाया था।
इसी हिंदुस्तान में से लाखों आदमी जिसमें कि हमको बेकार और वाहियात आदमी दिखाई पड़ते हैं, वे कहीं छिपे हुए थे और निकल कर आ गए। कहीं छिपे हुए आदमी हैं तो जरूर, भले ही हमें दिखाई नहीं पड़ते। हम यकीन नहीं कर सकते कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर केवल वाहियात आदमी, बेवकूफ आदमी, सड़े हुए आदमी, चालाक आदमी और चोर आदमी भरे हुए पड़े हैं। बेशक वे हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, हम जानते हैं कि मनसा देवी पर कौन कौन आदमी जाते हैं। हमको उनके फोटो मालूम हैं कि जो मनसा देवी के पहाड़ पर चढ़ करके सवा रुपये का प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं। वह आदमी बुजदिल है, जो पुरुषार्थी नहीं है और जो कम खर्च में बहुत सारा फायदा उठाने के लिए व्याकुल रहता है।
क्या यही है हिंदुस्तान का अध्यात्म? मित्रों, हमको बड़ी घृणा होती है और बड़ी नफरत होती है कि क्या हिंदुस्तान ऐसे लोगों से ही भरा हुआ पड़ा है जो पुरुषार्थ को महत्व नहीं देता और कर्मफल को महत्व नहीं देता,
जो देवी के सामने, पत्थर के टुकड़े के सामने सवा रुपये का प्रसाद चढ़ा करके मनोकामना पूरी कराना चाहता है।
क्या हिंदुस्तान का अध्यात्म यही है? क्या हिंदू धर्म यही है? क्या हिंदुस्तान का पूजा पाठ यही है?
इसे देखकर हमको बड़ा दैख होता है और बड़ी नफरत होती है कि अगर ऐसे ही लोगों का, इन्हीं लोगों का नाम धर्मवादी और अध्यात्मवादी है, पूजा कर्मी है, तो फिर ऐसे धर्म और पूजा को नमस्कार कर लेना ही अच्छा है। ऐसे में लोगों से भी कहना चाहिए कि आपका नास्तिक हो जाना अच्छा है, बजाय मनसा देवी पर सवा रुपया चढ़ा करके बेटे और बेटी पाने, दौलत पाने की उम्मीदों के लिए मारे मारे फिरें। इसकी अपेक्षा लाख गुना बेहतर है कि आप नास्तिक हो जाएं, मेहनत मजदूरी करें और रोटी कमाएं तो आपके लिए अच्छा है। आप बेकार की बातों में, वाहियात बातों में चक्कर काटते फिरते हैं। क्यों चक्कर काटते फिरते हैं?
मित्रों,
अगर अध्यात्म का यही स्वरूप है जो आज सर्वत्र दिखाई पड़ता है और जो पंडे और पुजारी हैं, वे लाल पीले कपड़े पहन करके समय खराब करते हुए और भीख मांगते हुए और लोगों में बदजुबानी और बेदिली की बात फैलाते हुए, परावलंबन की बात फैलाते हुए घूमते हैं, अगर इसी का नाम धर्म और अध्यात्म है, इसी का नाम संतपन है, इसी का नाम पुजारीपन है, इसी का नाम ब्राह्मणपन है, तो हम इसे नमस्कार करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि यह अध्यात्म बंद हो जाना चाहिए और इसके नाम पर नास्तिकवाद की स्थापना होना चाहिए। हम फिर यही कहेंगे,
मित्रों,
यह अध्यात्म नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, हमारे सामने तो यही आदमी निकल करके आ जाते हैं। इसलिए हमारे देश में और विदेश में सब जगह समझदार लोगों में नफरत पैदा होती चली जाती है। अगर इसी का नाम अध्यात्म है, धर्म इसी का नाम है, पूजा इसी का नाम है और पाठ इसी का नाम है, ज्ञान इसी का नाम है और ईश्वर की भक्ति इसी का नाम है, तो यह बड़ी वाहियात चीज है। इससे आदमी निकम्मा और नालायक होता चला जाता है। इसको बंद करना चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि धर्म और अध्यात्म के निष्ठावान लोग नहीं हैं? हैं, पर हम उनको तलाश नहीं कर पाते। उनको हमारी बात नहीं मालूम है। मेले में जो बच्चा खो जाता है, वह अपनी माँ को तलाश करता फिरता है कि हमारी माँ कहाँ गई, और माँ चिल्लाती फिरती है कि हमारा बच्चा कहाँ गया।
बिल्कुल यही हालत हमारी है। हम चिल्लाते फिरते हैं कि वे आदमी कहाँ हैं, जिनको धर्म के प्रति निष्ठा है, आस्तिकता के प्रति निष्ठा है और ईश्वर के प्रति निष्ठा है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा है।
कहाँ हैं सच्चे आदमी?
मित्रों,
हमें उनकी बहुत तलाश है, पर वे हमको नहीं मिलते।
सोमवती अमावस्या पर जाते हैं, वहाँ एक भी आदमी हमें नहीं मिलता।
मनसादेवी के मंदिर पर जाते हैं, वहाँ भी एक आदमी नहीं मिलता।
कुंभ के मेले में जाते हैं, तो वहाँ एक भी आदमी नहीं मिलता।
लेकिन इनको हमें तलाश करना ही चाहिए और तलाश करना ही पड़ेगा। हमने सारी जिंदगी एक ही काम किया है। जिन लोगों के अंदर हमने विचारशीलता पाई, दिशाएं पाई, जिनके अंदर हमने भावनाएं पाई, प्रेरणाएं पाई, उनको बड़ी मेहनत के साथ में मोती बीनने वाले जिस तरीके से पानी में डुबकी लगाते हैं, उसी तरीके से हमने डुबकी लगाई।
क्या डुबकी लगाने का काम हमारे जिम्मे रहेगा? या डुबकी लगाने वाला काम खत्म हो जाएगा? क्या मोती तलाश करने वाली प्रक्रिया को हम समाप्त करेंगे?
नहीं, समाप्त नहीं करेंगे। अब हम मोतियों को तलाश करने के लिए, हीरों को तलाश करने के लिए गांव-गांव जाएंगे और घर-घर जाएंगे और यह पता लगाएंगे कि अध्यात्म की जो मूलभूत प्रेरणाएं थीं, उनको समझने के लायक, सुनने के लायक किसी के पास दिल दिमाग है क्या?
हम उन दिल दिमाग वाले आदमियों को तलाश करेंगे। इसलिए मित्रों, हमको तीर्थयात्रा का कार्यक्रम बना करके चलना पड़ेगा और जहां रोशनी नहीं पहुंची है, वहां हमको जाना पड़ेगा।
जहां हैजे की बीमारी फैली हुई है, चेचक फैली हुई है, वे चेचक के मरीज, हैजे के मरीज बड़े अस्पताल में नहीं जा सकते, तो डॉक्टरों को घोड़े पर सवार होकर के और पैदल चलते हुए उन गांवों में पहुंचना पड़ेगा। बीमार लोग कैसे आ सकते हैं?
अगले दिनों हमको तीर्थयात्रा का एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और भूदान के कार्यक्रम की तरह पदयात्रा हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा। हमको और आपको जत्थे बनाकर घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा और आध्यात्मिकता के प्रति विचारशील लोगों के वर्ग में जो नफरत पैदा होती चली गई, उसको पुनर्प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा। मित्रों,
पागलों की बात जाने दीजिए, पागल तो कहीं भी जा सकते हैं। पागलों को तो कोई भी बहका सकता है।
पागल तो कुंभ मेले में भी मारे मारे फिरते हैं।
पागलों का हवाला मैं नहीं देता।
पागलों को तो चाहे जहां ले जाइए, सोमवती अमावस्या मेले में ले जाइए,
वे रामलीला में, रामचंद्र जी की बारात जो निकलती है, वहां भी इकट्ठे हो जाएंगे।
कागज का पुतला बना लीजिए।
यह कौन बन रहा है? रावण बन रहा है।
पागल वहां भी इकट्ठे हो जाएंगे।
पागलों की बात मैं नहीं कहता, मैं तो समझदार लोगों की बात कहता हूँ, जिसका एक एक पल और समय का एक एक लम्हा और एक एक क्षण कीमती है और जो कीमती चीजों की तलाश करता है और कीमती लोगों के पास जाना चाहता है।
विचारशील व्यक्ति आगे आए। मित्रों,
वे कीमती लोग कहाँ होंगे? हिंदुस्तान में से कीमती लोग खत्म हो गए हों, ऐसी बात नहीं है। विचारशीलता अभी भी है और कहीं ना कहीं जरूर है।
अगर नहीं थी तो बुद्ध को 2.5 लाख आदमी कहाँ से मिल गए?
अगर विचारशीलता दुनिया में से खत्म हो गई थी तो गुरु गोविंद सिंह के साथ इतने सारे सिख हाथ में माला और भाला लेकर के अपनी जान कुर्बान करने के लिए कहां से आ गए थे?
फिर महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहां से मिल गए थे? समझदार आदमियों को ढूंढने के लिए मित्रों, हमें फिर से निकलना पड़ेगा। इसके लिए तीर्थयात्रा की जो पद्धति है वह सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है।
अगले दिनों हम आपको वही सुपुर्द करेंगे और आपको गांव-गांव भेजेंगे और जो गांव 5 गांवों के बीच में आएगा वहां परिक्रमा लगाने के लिए हम आपसे कहेंगे। 10 आदमियों का जत्था जिस गांव में भी जाएगा वहां 10 आदमियों के हाथ में बिगुल अथवा शंख होगा और वे बिगुल बजाते हुए हर गांव में जाएंगे। आपको शंख बजाना नहीं आता होगा तो हम बिगुल खरीद करके देंगे और 10 आदमियों का जत्था बिगुल बजाता हुआ शंख बजाता हुआ हर गांव में परिक्रमा करेगा। दीवारों पर सद्वाक्य लिखता हुआ परिक्रमा करेगा और थोड़ी देर के लिए खड़ा होकर के एक व्याख्यान देगा।
मित्रों,
आप तो ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, थोड़ी ही देर तक ठहरेंगे और लोगों को मिशन की जानकारियां देंगे। आप किस तरीके से मिशन की जानकारियां देंगे? यह कि हमारा मिशन क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, धार्मिकता क्या है, आस्तिकता क्या है
और जिस मिशन को लेकर के हम चले हैं उसका उद्देश्य क्या है।
जहां आपको एक ही घंटा बोलने के लिए मिलेगा वहां आप किस तरीके से कहेंगे? अगर आप वहां संक्षेप में एक ही बात बताकर चल देंगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगा और आपको उसी तरह का मान लेंगे।
जादूगरी नहीं है अध्यात्म।
हमारे बारे में लोगों को यही गलतफहमी होती रही है। बहुत से आदमियों ने हमको जादूगर मान रखा है। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी,
आप हिमालय गए थे तो क्या क्या चमत्कार सीख कर आए।
ले बेटे, देख ले, तेरे बालों में से अभी कबूतर निकाल कर दिखा देते हैं।
बस बाबा,
असली कबूतर तो यही है। गुरुजी आ गए और सिर में से बाल में से ऐसा कबूतर निकाला।
बस हम तो हिमालय के असली बाबाजी बन गए।
पागल कहीं के। बेटे, जो सिर में से कबूतर निकालता है वह बाजीगर होता है, वह बाबाजी नहीं होता, वह संत नहीं होता। बाजीगर और बाबाजी में जमीन आसमान का फर्क है।
गुरु चमत्कार नहीं दिखाते, चमत्कार देखना है तो वहां जाकर देखना। कहां?
वहां सड़क पर जो आदमी बैठा हुआ है और मिट्टी से सांप बना रहा है, झोले में से कबूतर निकाल रहा है।
बेटे, बाबाजी चमत्कार नहीं दिखाते, संत चमत्कार नहीं दिखाते। नहीं साहब, चमत्कार दिखा दीजिए।
पागल कहीं का, बाबा जी के पास चमत्कार देखता है।
गांधी जी के पास कौन सा चमत्कार था? विवेकानंद जी के पास कौन सा चमत्कार था? नानक जी के पास कौन से चमत्कार थे?
कोई चमत्कार नहीं होते संतों के पास। चमत्कार होते हैं तो बस यही होते हैं कि सामान्य मनुष्य लोग मोह के बंधनों में सड़ी गली कीचड़ में सड़कर मरा करते हैं।
और संत?
संत स्वयं अपना उद्धार कर लेते हैं और अपनी नाव में बैठा करके असंख्यों को पार करा देते हैं।
इसलिए मित्रों,
पागलों की बात तो हम नहीं कहेंगे जो जगह जगह चमत्कार देखते फिरते हैं और अपना फायदा ढूंढते फिरते हैं कि हमारा यह फायदा करा दीजिए, हमारा वह फायदा करा दीजिए। लोगों ने हमको भी यही समझ रखा है, लेकिन क्या यह हमारी असली पहचान है? नहीं, हमारी यह असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान वह है जिसमें हम जादूगर नहीं है, बाजीगर नहीं है और मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं है, सिद्धि दिखाने वाले नहीं है और फोकट में आशीर्वाद देने वाले नहीं है।
जिन्होंने हमारा यह स्वरूप जाना है वास्तव में वे हमारे असली स्वरूप को नहीं जानते।
हमारे बारे में वे बिल्कुल अनजान हैं।
क्या है हमारा असली स्वरूप?
हमारा असली स्वरूप वह है जिसके द्वारा हम इंसान में इंसानियत पैदा करना चाहते हैं। इंसान में हम देवत्व का अवतरण करना चाहते हैं। इंसान में हम भगवान का अवतरण करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं? आपको हम देवता के रूप में, संत के रूप में, ऋषि के रूप में ढालना चाहते हैं, गढ़ना चाहते हैं। अभी जो नवरात्रि में आते हैं और अनुष्ठान करते हैं उनको तो हमारा एक ही पहलू मालूम पड़ता है, बाकी पहलू तो मालूम ही नहीं पड़ते।
बाकी दिशाएं तो मालूम ही नहीं पड़ती। जिन्होंने गायत्री महाविज्ञान पढ़ा है उनको तो हमारा जादूगर और चमत्कार वाला स्वरूप ही मालूम है। मित्रों,
इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे मिशन की समग्र और सर्वांग रूप में पूर्ण जानकारी अगर आपको देनी पड़े तो हमारी विचारधाराएं क्या हैं, कार्यपद्धतियां क्या है, थोड़े अंशों में बतानी पड़ेंगी। थोड़े से में अगर आप बताने में समर्थ न हो सके तो।
और आपने यज्ञ पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया
तो आपको लोग यह समझेंगे कि ये हवन के और यज्ञ के प्रचारक हैं। और कभी आपने गायत्री मंत्र की व्याख्या करनी शुरू कर दी, जहां जिस जनता के पास आप गए हैं वे लोग यह कहना शुरू कर देंगे कि ये तो गायत्री का जादू, गायत्री का चमत्कार, गायत्री की सिद्धि सिखाने वाले, संतोषी माता की सिद्धि सिखाने वाले और संतोषी माता का जादू और चमत्कार सिखाने वाले लोगों में से हैं। इस तरह लोगों में गलतफहमी पैदा होती चली जाएगी और नफरत पैदा होती चली जाएगी। इसलिए करना क्या पड़ेगा?
कभी आपको एक ही बात पर प्रवचन करने का मौका मिले तो आपके मस्तिष्क में एक संतुलित व्याख्यान रहना चाहिए।
उसमें कम से कम हम अपनी विचार पद्धति की पूरी पूरी जानकारी करा सके कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं।
मित्रों,
क्या करना पड़ेगा? आपको तीर्थयात्राओं के लिए जाना पड़ेगा। जिस गांव में आप पहुंचेंगे, जिस गांव में आप बिगुल बजाएंगे, जिस गांव में आप प्रभात फेरी निकालेंगे, जिस गांव में आप दीवारों पर सद्वाक्य लिखेंगे और आधे घंटे में यह बात कहना चाहेंगे कि आपको हम अपने मिशन की जानकारी देना चाहते हैं।
इसके लिए आपका व्याख्यान नपातुला, संतुलित, बंधे हुआ तैयार रहना चाहिए।
आपको अपने मिशन की उन तीनों धाराओं और तीनों जानकारियों, तीनों विचारधाराओं को समझाने की कोशिश करना चाहिए।
गायत्री मंत्र की धाराएं, उनको आप चाहे तो गंगा कहिए, जमुना कहिए और सरस्वती कहिए, अथवा गायत्री मंत्र की तीन धाराएं कहिए। यह त्रिवेणी है। गायत्री मंत्र के तीन चरण हैं और इन तीनों का समन्वय करके आपको एकाध पौन घंटा बोलने का मौका मिल जाए तो आप इन तीन विचारधाराओं का समन्वय करके समझाने की कोशिश करना चाहिए।
वास्तव में असली अध्यात्म यही है, असली धर्म यही है और असली भगवान की भक्ति यही है जिसे हम अपने मिशन के माध्यम से लोगों के दिलों में उतारना चाहते हैं और लोगों के दिमागों में प्रवेश कराना चाहते हैं।
आपको वहां यही निवेदन करना चाहिए। मित्रों, आपको यह निवेदन करना चाहिए कि हमारे गुरुजी ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने में बहुत सारा समय लगाया। उन्होंने न केवल समय लगाया वरन उसको सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध कराया। उन्होंने हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों को अ से लेकर य तक, ए से लेकर जेड तक के सारे धर्मग्रंथों को न केवल पढ़ा है वरन सब लोगों को पढ़ाने के लिए प्रयत्न किया है। मित्रों,
उन ग्रंथों को हमने संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। न केवल ट्रांसलेट किया है वरन छपाने का प्रयत्न किया है। न केवल छपाने का प्रयत्न किया है वरन संसार के प्रत्येक विद्यालय में, दुनिया के हर कॉलेज में, हिंदुस्तान में ही नहीं, संसार के हर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इन ग्रंथों को पहुंचाने का प्रयत्न किया है
ताकि लोग यह समझ सके कि आखिर हिंदू धर्म क्या है और भारतीय संस्कृति एवं भारतीय सभ्यता क्या है।
धर्म क्या है और भारतीय अध्यात्म क्या है, इसको समझने में हम समर्थ हो सके, लेकिन यह सारा के सारा शिक्षण बहुत बड़ा है। हमने जो ग्रंथ लिखे हैं वे बहुत बड़े हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे?
मित्रों,
जिनके पास समय नहीं है और जो कम समय में सारी की सारी चीजों को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, उनके लिए आपको यह बताना है कि उन्होंने तीन सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इन सारे के सारे ग्रंथों में तीन चीजें भरी पड़ी हैं। यहाँ हम आपको आधा घंटे के अंदर इन सारी की सारी चीजों को सुनाने के लिए आए हैं और आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, इन सबके सार के रूप में हमारे गुरुजी ने तीन चीजें निकाल कर रखी हैं। आपने हलवाई की दुकान देखी है, हलवाई की दुकान में कितनी सारी मिठाइयां और कितने सारे पकवान रखे रहते हैं, ढेरों रखे रहते हैं। उनमें से एक का नाम जलेबी होता है, एक का नाम इमरती होता है, एक का नाम बालूशाही होता है, एक का नाम पेड़ा होता है, एक का नाम खुरचन होता है,
एक का नाम क्या होता है आदि।
इस तरह बहुत सारी मिठाइयां रखी रहती हैं। अगर आप बारीकी से देखें कि इन मिठाइयों में क्या है, तो आपको इन सारी की सारी मिठाइयों में केवल तीन चीजें दिखाई पड़ेंगी, चौथी चीज और कुछ है ही नहीं। क्या क्या तीन चीजें हैं?
मित्रों,
एक चीज है दूध। दूध से खोवा मावा बन जाता है, रबड़ी बन जाती है, घी बन जाता है, मक्खन बन जाता है, मलाई बन जाती है। असलियत में यह सब आपको मिठाई की दुकान में मिलेगी।
यह हुआ दूध नंबर एक। नंबर दो, आपको मिलेगा गन्ना।
गन्ना में से शक्कर निकलती है, शक्कर से मिश्री बनती है,
चाशनी बनती है, गुड़ बनता है, खानर बनता है आदि।
गन्ने से तरह तरह की चीजें बना करके रखी जाती हैं हलवाई की दुकान में।
तीसरी चीज है अनाज।
गेहूं, चने को पीसकर कहीं कहीं उसको जलेबी में मैदा मिला देते हैं, बूंदी के लड्डू में बेसन मिला देते हैं। यह क्या है?
अनाज का पिसान आटा।
इस तरह ये तीन चीजें हैं, चौथी कोई चीज नहीं है। तीन चीजों के द्वारा हलवाई की कला, हलवाई का चमत्कार और हलवाई का ढंग सब मिलाकर क्या क्या बनाकर रख दिया। इस तरीके से गेहूं का आटा इतनी मात्रा में, शक्कर इतनी मात्रा में और पानी मिलाकर जलेबी बनकर तैयार हो गई। यह क्या बन गया? इसमें इतना दूध और इतनी चीनी मिला करके क्या बना दिया?
पेड़ा बना दिया।
चाहे पेड़ा हो चाहे जलेबी हो, सारी की सारी चीजों में केवल तीन ही चीजें आपको मिलेंगी। तीन के अलावा कोई चौथी चीज है ही नहीं।
गुरुदेव के चिंतन का सार निष्कर्ष। मित्रों,
धर्मग्रंथों में आप जहां कहीं भी पढ़ें, भले ही आप रामायण पढ़ लीजिए, भले ही आप भागवत पढ़ लीजिए, भले ही आप वेद पढ़ लीजिए, भले ही आप उपनिषद पढ़ लीजिए, सारे के सारे ग्रंथों के सार के रूप में गुरुजी ने जो चीजें पाई हैं और उनका विश्लेषण करके जो निष्कर्ष निकाला है, उसे उन्होंने तीन चीजों के रूप में रखा है। यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। यह बात आप कहाँ कहेंगे?
वहाँ कहेंगे जहाँ आपको एक घंटे का प्रवचन करने का मौका मिलेगा। जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा मौका मिले, वहाँ आप यही कहना।
शरीर के भीतर हड्डियाँ हैं, मांस है, पैर हैं और न जाने क्या क्या है, पर वास्तव में यह पांच तत्वों का बना हुआ है। इसी तरीके से सत, रज और तम, इन चीजों से प्रकृति बनी हुई है। सारी की सारी प्रकृति का निर्माण इन्हीं तीन चीजों से हुआ है।
मित्रों,
इसी तरह सारे के सारे अध्यात्म का, धर्म का आविर्भाव इन तीन चीजों से हुआ है।
ये हैं आस्तिकता, ईश्वर विश्वास, कर्मफल की सुनिश्चितता एवं निर्भयता।
पहली चीज क्या है?
भगवान का विश्वास, जिसको मैं क्या कहता हूँ, ईश्वर की भक्ति कहता हूँ।
ईश्वर की भक्ति के दो रूप हैं। पहला वाला रूप यह है जो कि पूजा और पाठ के रूप में सामने आता है। यह कलेवर है, इसे आप भूल मत जाना।
किसे?
कौन सा वाला? जो हम पूजा करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यह कलेवर है। कलेवर के पीछे जो भावना है, उसको आप ध्यान रखना। कलेवर के पीछे जो प्राण भरा हुआ है, वह क्या भरा हुआ पड़ा है?
वही ईश्वर का विश्वास भरा हुआ पड़ा है।
ईश्वर का विश्वास अलग चीज है और पूजा अलग चीज है।
यह संभव है कि पूजा करने वाला 6 घंटे पूजा करता हो, 7 घंटे पूजा करता हो, 5 घंटे पूजा करता हो, लेकिन अगर उसके हृदय को खोलकर देखें तो वह पक्का नास्तिक हो सकता है और पक्का चोर हो सकता है। यह बिल्कुल संभव है। पहला सूत्र, आस्तिकता और ईश्वर विश्वास। मित्रों,
पूजा करने वाले के बारे में हम यह राय निर्धारित नहीं कर सकते कि यह भगवान का भक्त भी है और भगवान का विश्वासी भी। भगवान का विश्वास अलग होता है और पुजारी अलग होता है। पुजारी किसे कहते हैं? पुजारी उसे कहते हैं जो स्नान करता है, तिलक लगाता है, माला घुमाता है, चंदन चढ़ाता है, यह पुजारी है।
और ईश्वर का विश्वासी?
ईश्वर का विश्वासी वह है जिसको इस बात की जानकारी है कि भगवान हजार आँख वाला है। कोई ऐसी जगह बची हुई नहीं है जो कि भगवान की निगाह से बाहर हो।
भगवान न्यायकारी है, भगवान इंसाफ पसंद है, भगवान कर्मफल के महत्व को मानने वाला है।
भगवान के यहाँ किसी को भी प्यार मिलता है तो वह कर्म के आधार पर मिलता है, पूजा के आधार पर नहीं। आज तक भगवान ने मात्र पूजा के आधार पर किसी को प्यार नहीं किया और न भविष्य में कभी करेगा।
मित्रों,
भगवान का प्यार जब कभी भी मिलेगा तो वह इस आधार पर मिलेगा जिसके लिए उसने आदमियों की परख करने के लिए दो रास्ते बना करके रखे हैं।
पहला, इसके कर्म कैसे हैं?
सिक्का खरा है या खोटा है, इसके लिए हम सिक्के को अंगूठे से बजाते हैं। उसकी आवाज टनटन है तो हम रख लेते हैं, लेकिन यदि आवाज खटखट आती है तो फेंक देते हैं। इससे पता चल जाता है कि सिक्का खरा है या खोटा है। जिसको हम प्यार करते हैं, अच्छे सिक्के को जमा कर लेते हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, वे भगवान के लिए पक्के सिक्के हैं, सही सिक्के हैं। इनको भगवान अपनी छाती से लगाकर रखते हैं और जो खोटे सिक्के हैं, जिसमें से खटखट की आवाज आती है, उसे फेंक देते हैं, काट करके अलग फेंक देते हैं। नहीं साहब, हम तो पूजा करते हैं।
अरे बाबा,
यहाँ पूजा की बात नहीं चल रही है, कर्म की चल रही है। पूजा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी खराब बात नहीं है। पूजा पूजा चिल्लाने की बजाय यह बताइए कि आपके विचार किस तरीके के हैं।
मित्रों, ईश्वर का विश्वासी हर जगह भगवान को हाजिर नाजिर समझता है।
ईश्वर विश्वासी इस बात को समझता है कि दुनिया में कर्म ही मुख्य है। कर्म के ऊपर ही व्यक्ति की सामाजिक उन्नति टिकी हुई है। कर्म के ऊपर ही मनुष्य की भौतिक उन्नति टिकी हुई है। कर्म के ऊपर ही मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति टिकी हुई है। कर्म के ऊपर ही भगवान का प्यार टिका हुआ है। सारी की सारी चीजें कर्म के ऊपर टिकी हुई हैं।
ईश्वर विश्वासी अर्थात
कर्म ही सबसे बड़ा योग है।
गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कर्मयोग की ही महत्ता बताई थी।
जो भगवान का विश्वासी होता है, वह भगवान के आदेशों के रूप में, भगवान के निर्देशों के रूप में अपने कर्तव्यों को सबसे बड़ा आधार समझता है और दुनिया में कर्तव्यों का पालन करता हुआ चला जाता है।
अर्थात उसके काम श्रेष्ठ होते हुए चले जाते हैं, उसके विचार श्रेष्ठ होते हुए चले जाते हैं। यही है ईश्वर विश्वासी की पहचान। मित्रों, ईश्वर का विश्वासी निर्भय होता है। ईश्वर के विश्वासी को किसी का भय नहीं रहता।
ईश्वर के विश्वासी की पहचान यह है कि वह कभी भी डरता नहीं। जो आदमी भगवान से डरेगा, उसको किसी और से डरने की कभी भी जरूरत नहीं है। जो आदमी भगवान से नहीं डरेगा उसको कदम कदम पर डरने की जरूरत पड़ेगी। उसे पत्ते से डरना पड़ेगा, पेड़ से डरना पड़ेगा, पौधे से डरना पड़ेगा, हरेक से डरना पड़ेगा। लेकिन जिसने भगवान से डरना अंगीकार कर लिया, फिर उसको डराने वाला कौन है? अगर हमारे भीतर चोर नहीं है तो फिर हमको कौन डरा सकता है? कोई नहीं डरा सकता। हम ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, फिर हमारे ऊपर कोई कैसे अंगुली उठा सकता है?
अंगुली उठाएगा तो धूल उसी के ऊपर गिरेगी। जहाँ जख्म होगा वहाँ मक्खी बैठेगी, कीड़े पड़ेंगे।
जहाँ जख्म नहीं है वहाँ किस तरीके से कीड़े पड़ेंगे? जिसको भगवान का विश्वास है वह आदमी भगवान से डरता है, उसके इंसाफ से डरता है, उसके कायदे और कानून से डरता है। जो व्यक्ति उसके कायदे कानून और इंसाफ से डरेगा फिर उसको किसी से नहीं डरना पड़ेगा।
निर्भय व्यक्ति ही सबसे सुखी। मित्रों,
रामायण में यही कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी कौन है?
सबसे ज्यादा सुखी आदमी वह है जिसको डरना नहीं है। सकल कर्म करी थकेउ गोसाई।
भय न सुखी अभय की नाई। दुनिया में अभय के बराबर कोई सुख नहीं है। रात को जिसको बढ़िया वाली गहरी नींद आती है और जिसको यह पता रहता है कि कल रोटी हमें अवश्य मिलने वाली है, तो फिर कल की चिंता करने की क्या जरूरत है? हमको परेशान रहने की क्या जरूरत है और हमको निराश रहने की क्या जरूरत है?
यह सारी की सारी व्यवस्थाएं जब भगवान ने अपने हाथ में संभाली हुई हैं।
जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ की छाती में गर्म दूध के दो कटोरे दे करके भेजा था, तो फिर क्या वह हमारी आगे वाली जिंदगी को संभालने वाला नहीं है?
जाको राखे साइयां, मार सके न काए,
बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए।
मित्रों,
भगवान का विश्वास ऐसा होता है कि वह व्यक्ति कहता है कि साइयां से हमारा प्यार है, भगवान से हमारा प्यार है। लेकिन दूसरी ओर राहु के बारे में, केतु के बारे में, शनिश्चय के बारे में, मंगल के बारे में आपको डरने की जरूरत क्यों पड़ी?
कल हमारा बैरी हमको मार डालेगा।
अरे भाई,
बैरी मारेगा तो हमारे पास ही तो आएगा, तब हम देख लेंगे। जो कुछ होगा उसका मुकाबला करना पड़ेगा। मित्रों,
जिस आदमी में इतनी बहादुरी और हिम्मत भरी रहती है वह कौन होता है?
उसको हम ईश्वर का विश्वासी कहते हैं।
ईश्वर विश्वासी उसे कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक प्राणी के भीतर एक भगवान के प्रकाश की ज्योति को देखता रहता है और हरेक के साथ में भलमनसाहत का व्यवहार करता रहता है। भलमनसाहत के साथ में लोगों की बुराइयों का निवारण करना भी शामिल है। भगवान की मूर्तियों की हम सफाई करते हैं। मूर्ति पर कहीं अगर चिड़िया की बीक पड़ जाती है तो हम उसे हटा देते हैं। सफाई भी इसमें शामिल है। लोगों को सुधार देना भी इसमें शामिल है और लोगों को सजा देना भी शामिल है और लोगों का विरोध करना भी शामिल है।
किसमें?
प्यार करने में। वह हरेक के अंदर यह समझता रहता है कि इसके अंदर भगवान की ज्योति है।
प्रत्येक इंसान के कल्याण की सोचें। मित्रों, आदमी को आदमी का सम्मान करना चाहिए।
जब किसी कैदी को फांसी की सजा दी जाती है तब पुलिस सुपरिंटेंडेंट, मजिस्ट्रेट और D0M0 जिसने हुक्म सुनाया था वे वहां चले जाते हैं और टोपी उतार लेते हैं और काला कोट पहन करके जाते हैं। स्पष्ट है कि आदमी की इज्जत है और सम्मान है।
अतः इंसान को इंसान की इज्जत करनी चाहिए।
जिस इंसान की भी हम इज्जत करते हैं वह भावना हर आदमी के भीतर रहनी चाहिए।
हमारे अंदर वह भावना रहनी चाहिए जो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कही थी, सिय राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
यदि प्रत्येक प्राणी के भीतर राम और प्रत्येक प्राणी के भीतर सिया की यह वृत्ति हमारी आंखों में आ जाए तो फिर क्या हम किसी आदमी के साथ में डैक का व्यवहार करेंगे? किसी आदमी का शोषण करेंगे? क्या किसी आदमी के साथ में ठगबाजी करेंगे? क्या हम किसी के साथ में चालाकी करेंगे? नहीं करेंगे। तब हमारा हरेक साथ में ऐसा प्रेम भरा हुआ, सहानुभूति से भरा हुआ, श्रद्धा से भरा हुआ ऐसा व्यवहार होगा जिसमें उसका कल्याण भी शामिल है। जरूरत पड़ने पर हम उसके साथ में सख्ती से भी पेश आएंगे। मैं यह नहीं कहता कि हर आदमी के साथ में मुलायमियत ही आनी चाहिए। चोर, डाकू, बुरे और हथियारों के साथ में भी आपको मुलायमियत के साथ पेश आना चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि डाकू का कल्याण, चोरों का कल्याण इसी में है कि जिस तरह अगर हमारा बच्चा नहीं मानता है तो हम उसके कान पकड़ते हैं, उसके चपत लगाने की बात होती है तो उसमें उसका कल्याण छिपा हुआ है।
मित्रों,
कल्याण का मतलब यह नहीं है कि आप हर आदमी के साथ, जो बुरे से बुरे आदमी हैं उनके साथ भी सहानुभूति का व्यवहार करते हुए चले जाएं, उसके काम में भी सहायता करते हुए चले जाएं। हमारा यह मतलब कदापि नहीं है। अगर आप यह गलती करेंगे तो आप कसाईयों को पूरी हलवा खिलाने लगेंगे और सबको समान मानने लगेंगे।
फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी।
ऐसा आपको नहीं करना है।
लेकिन मित्रों,
हर आदमी के भीतर, हर प्राणी के भीतर जो हमारा कर्तव्य जुड़ा हुआ है, वह सेवा का जुड़ा हुआ है, सद्व्यवहार का जुड़ा हुआ है, भलमनसाहत से जुड़ा हुआ है, शराफत का जुड़ा हुआ है।
विचार शैली है आस्तिकता। मित्रों, भगवान का विश्वास आस्तिकता विचार करने की एक शैली है, सोचने का एक तरीका है।
यह पूजा का ढंग नहीं है। पूजा का ढंग अलग है। कर्मकांड का भी एक तरीका है, लेकिन वह ऐसे ही है जैसे हम जैकेट पहने हुए बैठे हैं। जैकेट हमारे शरीर को ढकने के लिए है। ईश्वर विश्वास को पक्का करने के लिए, ईश्वर की आस्थाओं को परिपक्व करने के लिए हम पूजा भी करते हैं, जप भी करते हैं और सूर्यनारायण को जल भी चढ़ाते हैं। और हम यह भी करते हैं और वह भी करते हैं। सारे के सारे काम करते हैं, पर वह मूल नहीं है। मूल वह है जिसको हम ईश्वर का विश्वास कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारा मिशन आस्तिकवाद की स्थापना करने चला है। ईश्वर का विश्वास, जो दुनिया में से समाप्त हो गया है, उसकी पुनः स्थापना करने के लिए हम चले हैं। लोगों से आप यह बात अवश्य कहना।
मित्रों,
सारे के सारे धर्मग्रंथों में और सारे के सारे ऋषियों की वाणियों में, सारे के सारे सत्संगों में अगर आपको कहीं से सार तलाश करना हो, तो सारभूत बात वही है जिसे ईश्वर विश्वास कहते हैं। कोई आदमी आपको रामायण की कथा पढ़ने के लिए कहता है, रामायण का पाठ करने के लिए कहता है, तो आप कहना कि यह बात ठीक है कि रामायण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि वह रामायण का कलेवर है, रामायण का कंबल है। रामायण का पढ़ना या पाठ करना रामायण की जीवात्मा नहीं है।
रामायण की जीवात्मा कहाँ है?
रामायण की जीवात्मा वहाँ है जबकि हम रामचंद्र जी के उपदेश का परिपालन और रामचंद्र जी की भक्ति किस तरीके से की जा सकती है, इसके लिए हनुमान जैसे कदम उठाने के लिए, भरत जैसे कदम उठाने के लिए और अंगद जैसे कदम उठाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तब जो स्फूर्ति हमारे मन में आती है, उमंग हमारे मन में आती है, उचंग हमारे मन में आती है, उस चीज का नाम क्या है?
उस चीज का नाम ईश्वर विश्वास है।
वह उसका प्राण है, वह उसका जीवन है। सिद्धियां उसी में हैं, चमत्कार उसी में हैं, वरदान उसी में है, कल्याण उसी में है।
भजन में नहीं है कल्याण,
राम के नाम में नहीं है कल्याण। राम के नाम का तो तोते भी उच्चारण कर लेते हैं, पर उससे उनका कल्याण होता है क्या?
तोतेटन का नाम नहीं है ईश्वर विश्वास। मित्रों,
तोते को मैंने ऐसा सुंदर गायत्री मंत्र बोलते हुए देखा है और उसका मैं टेप करा करके भी लाया था।
जब मैं पूर्वी अफ्रीका गया था तो वहाँ अफ्रीका की ही विद्या नाम की एक लड़की भी आई थी।
उसने एक बड़ा तोता पाल रखा था।
ओम भूर्भुवः स्वः से लेकर प्रचोदयात तक पूरे वाक्यों में मंत्र बोलता था।
मुझे शक होता था कि यह कोई मनुष्य बोल रहा है कि जानवर बोल रहा है। मैंने उस लड़की से पूछा कि इतने मधुर स्वर में कौन बोल रहा है। वह बोली, पॉली बोल रहा है। पॉली कौन है? पॉली हमारा तोता है। कहाँ है?
जरा हमको दिखाना। उसने दिखाया।
पॉली को उसने बहुत सी बातें याद करा कर रखी थी।
उसका फोटो भी मैं खींच कर लाया था।
उसको उसने न जाने क्या क्या सिखा कर रखा था,
सवाल जवाब सिखा कर रखा था
और बहुत सी बातें सिखा कर रखी थी। कांगो का वह तोता इतना बड़ा था, कबूतर जैसा काले रंग का।
शक्ल उसकी तोता जैसी थी किंतु रंग हरा नहीं था, वरन काला था। मित्रों,
गायत्री मंत्र को जब तोते बोल लेते हैं तब उनको क्या कहेंगे? पंडित जी कहेंगे या आचार्य जी कहेंगे, ब्रह्मा जी कहेंगे या गुरुजी कहेंगे? नहीं साहब, हम जबान से मंत्र बोलते हैं। बेटे, जबान से बोलने वाले मंत्र की कोई कीमत नहीं है। जबान से क्या मंत्र बोलता है हमें मालूम नहीं कि तू गायत्री मंत्र बोलता है, कुरान पढ़ता है, हमें नहीं मालूम क्या पढ़ता है।
मर्जी आए तो पढ़, मर्जी ना आए तो मत पढ़।
असलियत जबान में नहीं है। इंसान की जो असलियत है वह हृदय में है।
इसलिए अगर ईश्वर विश्वास की निष्ठा हमारे हृदय में जगती हुई चली जाएगी तो हम ईश्वर परायण होते हुए चले जाएंगे, ईश्वर के निर्देशों पर चलने वाले होते हुए चले जाएंगे। तब हम श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, संत का जीवन जिएंगे, उदात्त जीवन जिएंगे, लोभ मोह से मुक्त जीवन जिएंगे, अगर हमारे पास आस्तिकता होगी तब। आस्तिकता की स्थापना है गायत्री परिवार का लक्ष्य। मित्रों,
हम इसी आस्तिकता की स्थापना करेंगे क्योंकि यही आस्तिकता का प्राण है। वेदों से लेकर पुराणों तक में और भागवत से लेकर गीता तक में इसी आस्तिकता की स्थापना करने के लिए ईश्वर के सारे क्रियाकलापों की, ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर की उपासना की पद्धति का निर्माण किया गया।
आपको अपने व्याख्यानों में एक बात यह भी जरूर बतानी चाहिए, समझानी चाहिए।
इसका विस्तार उदाहरणों से किया जा सकता है। आप इस तरह के ढेरों उदाहरण सुना सकते हैं।
उदाहरण के लिए एक चोर था।
वह अपने बच्चे को लेकर चोरी करने के लिए गया।
उसने बच्चे से कहा, खेत के बाहर खड़े रहना। अगर कोई मालिक इधर आता दिखाई पड़े, कोई ऐसा आदमी इधर आता हुआ मालूम पड़े, तो हमें सचेत कर देना।
हम और तुम भाग चलेंगे और खेत नहीं काटेंगे। लड़का खेत की मैन पर खड़ा हो गया।
थोड़ी देर में लड़का चिल्लाया, पिताजी भागो। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? अरे देखो, खेत का मालिक आ गया, जल्दी भागो। बस वे दोनों भाग गए। चोर ने बेटे से पूछा, लड़के बता मालिक कहाँ है? उस लड़के ने कहा, वह तो भगवान था।
वह सबका मालिक है और जर्रे जर्रे का मालिक है।
उसकी हजार आंखें हैं, वह आपको देख रहा था।
खेत का मालिक नहीं देख रहा था तो क्या हुआ?
लेकिन सबका मालिक भगवान तो देख रहा था।
भगवान देख रहा था, यह यकीन और यह विश्वास हमारे भीतर आए जो कि लोगों को मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। पड़ोसी को मालूम नहीं है, समाज को मालूम नहीं है, तो क्या हुआ? भगवान को मालूम है, वह तो सब कुछ देख रहा है। डर तो उसी भगवान का है।
सजा देने वाला तो वही भगवान है,
पुरस्कार भी देने वाला वही है।
अगर यह विश्वास हमारे जीवन में आ जाए तो मित्रों,
हम बेईमानी किस तरीके से करेंगे? हम चालाकी कैसे करेंगे? हम बुरे काम कैसे करेंगे? दगाबाजी हम कैसे करेंगे और विश्वासघात हम कैसे करेंगे? इन सब बातों से यदि हम अवगत हो जाएं, तो फिर हम अपनी जबान से कड़वा कैसे बोलेंगे?
अगर हमारे सामने भगवान आकर खड़े हो जाएं, हनुमान अगर हमारे सामने आकर खड़े जो जाएं, तो क्या हम कड़वे वचन बोलेंगे?
अगर रामचंद्र जी हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं, तो हम कड़वे वचन बोलेंगे,
उनको गालियां देंगे, उनके सामने बुरा व्यवहार करेंगे?
नहीं करेंगे।
हमारे व्यवहार में मिठास आ जाएगी। इस तरह जो भगवान का विश्वासी होगा, उसके जीवन में मिठास आ जाएगी। आंतरिक जीवन का परिष्कार है अध्यात्म। मित्रों, यह उद्देश्य नंबर एक, गंगा की धारा नंबर है, जिसे हमारा मिशन लेकर चला है,
जिस अध्यात्म को लेकर के चला है।
मानव जीवन का कल्याण करने के लिए ऋषियों ने अध्यात्म की त्रिवेणी बनाई थी, नंबर एक। नंबर दो, यमुना।
यमुना क्या है?
यमुना यह है कि हमारे अपने आंतरिक जीवन का परिष्कार।
आपको लोगों को यह बताना चाहिए कि भारतीय अध्यात्म की दिशा यह है।
हर आदमी अपने भीतर सारी की सारी क्षमताएं, सारी की सारी संभावनाएं दबाए हुए बैठा है।
जब कभी भी किसी का भी विकास होगा, जब कभी भी किसी का कल्याण होगा, जब कभी भी किसी को शांति मिलेगी, तब उसको वह शांति अपने ही भीतर तलाश करनी पड़ेगी। जब कभी भी किसी आदमी का उद्धार होना होगा, तो उसके उद्धार की प्रेरणा और प्रकाश भीतर से ही आएगा। जब कभी भी किसी आदमी को सिद्धियां और चमत्कार तलाश करने हों, तो वह बाहर से नहीं मिलेगा। मरघट में बैठकर, खोपड़ी में पानी पीकर और मुर्दे की लाश के ऊपर चावल पका पकाकर खाने से आपको चमत्कार नहीं आएगा।
चमत्कार जब कभी भी आएगा, तो अपने भीतर से आएगा।
आपके भीतर रिद्धियां भरी पड़ी है, सिद्धियां भरी पड़ी हैं, चक्र भरे हुए पड़े हैं और न जाने क्या से क्या भरा हुआ पड़ा है।
मित्रों,
ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर परिपूर्ण मात्रा में भरी हुई पड़ी हैं। लेकिन आग के अंगारे के ऊपर जिस तरीके से राख की परतें जम जाती हैं और वह सारा का सारा अंगारा काला दिखाई पड़ता है और उस अंगारे के अंदर जो गर्मी होती है, वह दिखाई देनी बंद हो जाती है। अंगारे के अंदर जो चमक होती है, वह दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि काली वाली परत चारों ओर से छा जाती है। जब हम इस काली परत को हटा देते हैं, तो अंगारा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, जलते हुए धधकते हुए रूप में आ जाता है। हमारी बाधाएं, जिसको हम अज्ञान कह सकते हैं, अभाव भी कह सकते हैं, जिसको हम पिछड़ापन कह सकते हैं, जिसको हम मलिनताएं कह सकते हैं और जिसको हम कषाय कलमश कह सकते हैं, मित्रों,
यह हमारे भीतर वाली कमजोरियां हैं,
जिसको हम योग कहते हैं, उपासना कहते हैं, जिसको हम तप कहते हैं। इसका मतलब एक है और वह यह है कि हम अपने आप में, अपने गिरेबान में मुंह डालें और अपने आप को तलाश करें कि हमारी भूलें कहाँ होती हैं, हमारी गलतियां कहाँ होती हैं, दोष हमारे कहाँ हैं,
दुर्गुण हमारे कहाँ हैं,
कषाय हमारे कहाँ हैं और कलमश हमारे कहाँ हैं, मल हमारे कहाँ हैं, आवरण हमारे कहाँ हैं और विक्षेप हमारे कहाँ हैं। आदर्शों की आग में तपने का नाम है अध्यात्म।
इसलिए मित्रों,
इन सब चीजों की सफाई करने के लिए, अपने आप की सफाई करने के लिए तैयार हो जाइए,
अपने आप को तपाने के लिए तैयार हो जाइए।
जिस तरीके से आग में डालकर सोना को तपाया जाता है, उसी तरीके से हम सिद्धांतों की आग में, आदर्शों की आग में अपनी मलिनताओं को तपाना शुरू कर दें, तो हम क्या हो जाएंगे? तब हम तपा हुआ सोना हो जाएंगे, हम भस्म बन जाएंगे।
जिस चीज का नाम तप है, जिस चीज का नाम योग है, मित्रों,
वह और कुछ नहीं है। केवल यह है कि हमको अपने भीतर प्रवेश करना चाहिए और अपने दोषों और अपने अवगुणों को समझना चाहिए,
अपनी भूल और गलतियों को समझना चाहिए और उनको सुधारने के लिए जद्दोजहद करना चाहिए
और स्वयं के बारे में अपने आप से लड़ाई करना चाहिए। हमारे अपने भीतर कितनी मलिनताएं दबी पड़ी हैं, हमारे भीतर जो मलिनताएं भरी पड़ी हैं, उन्हीं की ये प्रतिक्रियाएं हैं जो आपको दरिद्रता के रूप में दिखाई पड़ती हैं। बीमारियों के रूप में जो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं वे और कुछ नहीं वरन आपके भीतर की मलिनताएं हैं। आपको जो अपने चारों ओर के वातावरण में वैर मालूम पड़ता है, दोष मालूम पड़ता है, वह और कुछ नहीं है वरन आपकी मलिनताओं की छाया है, उनकी प्रतिक्रिया है। आंतरिक मलिनताएं ही हैं रोग शोक का कारण।
मित्रों,
हमको चारों ओर से जीवन कितना भयंकर, कितना क्लेशप्रद, कितना कर्कश, कितना दुष्ट दिखाई पड़ता है। वह कौन है जो हमको चारों ओर से कंपाता है, जो चारों ओर से भयभीत करता है, जो चारों ओर से संत्रस्त करता है, हताश करता है?
मित्रों,
वह और कोई नहीं है वरन अपने भीतर की कमजोरियां हैं। यह दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है और बड़ी शानदार है, यहाँ पाप कहाँ है, यहाँ अनाचार कहाँ है, यहाँ गलतियाँ कहाँ हैं? कहीं नहीं है। हमारे भीतर जो कमजोरियाँ हैं वही लौट लौट कर दीवार पर आकर खड़ी हो जाती हैं उसके रूप में और वही हमको भयभीत करती रहती हैं,
वही डराती रहती हैं।
आपकी बीबी भयंकर है और गाली देने वाली है तो आपका क्या बिगाड़ सकती है?
आपको मैं कितनी बार एक किस्सा सुनाता रहा हूँ।
संत तुकाराम का किस्सा न जाने कितनी बार सुनाया है। एक बार वे कहीं से एक गन्ना लाए थे, उनकी बीबी ने उसे उनकी पीठ पर दे मारा और उसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़े को उन्होंने अपनी बीबी के हाथ में थमा दिया था और एक को स्वयं चूसने लग गए थे। उन्होंने कहा कि पीठ में लग गई सो लग गई, पीठ में लगने से क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे हाथों का चमत्कार देख लिया कि तुमको कितना ठीक तरीके से निशाना मारना आता है।
तुम एक गन्ने के दो टुकड़े कर सकती हो, तुम्हारे हाथ तो चूमने लायक हैं।
उन्होंने यह गलती तो देखी नहीं कि हमारी पीठ में गन्ना क्यों मारा,
वह तो उनकी कला को देखते रह गए।
उन्होंने कहा कि देखो इसको गन्ना मारने की कला कैसी बढ़िया आती है, एक बार में ही गन्ने के बराबर दो टुकड़े कर देती है, क्या कमाल के हाथ हैं।
उन्होंने स्त्री के हाथ की खूबसूरती को देखा।
आप वही खूबसूरती लोगों में देखना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी सामाजिक समस्याएं सेकंडों में हल होती हैं कि नहीं होती हैं। अभी आपका घर जिसमें आपको नरक दिखाई पड़ता है और चारों ओर भयंकरता दिखाई पड़ती है, आप अपने विचारों को बदल लीजिए और दृष्टिकोण को बदल लीजिए और फिर मजा देखिए कि आप नरक में से स्वर्ग में कैसे चले आते हैं।
स्वर्ग नरक और कुछ नहीं, दृष्टिकोण मात्र हैं। मित्रों,
नरक और कुछ नहीं है, बस हमारे विचार करने की एक शैली है, विचार करने का एक तरीका है, जिसमें सारी दुनिया बड़ी खौफनाक, बड़ी भयंकर और बड़ी खूनी दिखाई देती है। स्वर्ग कोई स्पेशल स्थान नहीं है।
स्वर्ग किसी जगह का, किसी मोहल्ले का नाम नहीं है।
स्वर्ग कोई गांव नहीं है। स्वर्ग आदमी के विचार करने की एक शैली है और सोचने का एक ढंग है, जिसमें आदमी अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करता है। चमत्कार वही है, सिद्धियां वही हैं, जादू वही है। जो कुछ भी आप तलाश करना चाहते हैं वह केवल और केवल आपके भीतर छिपा हुआ भरा पड़ा है। आप अपने आप की सफाई कीजिए, अपने विचारों की सफाई कीजिए, अपने अवगुणों की सफाई कीजिए, अपने कर्मों की सफाई कीजिए,
अपने स्वभाव की सफाई कीजिए। हर आदमी से आप कहिए कि यही महाभारत है जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था,
और यही है वह राम रावण युद्ध जो कि वाल्मीकि रामायण में दिखाया और समझाया गया है।
मित्रों,
रावण हमारे भीतर बैठा हुआ है अहंकार के रूप में और पाप के रूप में। कंस हमारे भीतर बैठा हुआ है दुष्टता के रूप में और पाप के रूप में। दुर्योधन हमारे भीतर बैठा हुआ है अनाचार, अहंकार और पाप के रूप में।
हमको इन्हीं का संहार करने के लिए भगवान को पुकारना चाहिए,
भगवान को बुलाना चाहिए कि आप धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए आइए।
धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश बहिरंग विश्व में भी होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे अंतरंग विश्व में होना चाहिए।
हम में से हर एक आदमी को चरित्रवान होना चाहिए और कर्तव्यों का पालन करने वाला होना चाहिए।
हमें शरीफ होना चाहिए, भला आदमी होना चाहिए और श्रेष्ठ आदमी होना चाहिए। व्यक्तित्व की प्रामाणिकता विकसित करें। मित्रों,
हमें लोगों को यही शिक्षण करना है। जहाँ कहीं भी हम समाज में जाएंगे और जहाँ कहीं भी हमको एक घंटा बोलने का मौका मिलेगा, हमें इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या करना है।
ये प्रिंसिपल हैं।
इनके ऊपर एक एक दो दो चीजें जो मैंने आपको बताई है, आपको तीन धाराएं बताई हैं, उनके ऊपर उदाहरण और दृष्टांत देना चाहें तो हजारों दृष्टांत हैं।
अगले दिनों हमारी एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है।
अगर आपको इन धाराओं के ऊपर उदाहरण ढूंढने हो, तो पुराणों के उदाहरण, कथाओं के उदाहरण, देश एवं विदेशों के उदाहरण, कितने सारे उदाहरण आपको मिलते चले जाएंगे। क्या आपको वह उदाहरण ध्यान नहीं है?
कौन सा? वेस्टर्न वॉच कंपनी का।
वेस्टर्न वॉच कंपनी की घड़ियों का मार्केट उसकी प्रामाणिकता पर निर्भर है। जहां अन्य कंपनियों का शेयर 100 रुपये का बिकता है, वहीं वेस्टर्न वॉच कंपनी का शेयर 2000 रुपये का बिकता है। क्यों बिकता है? इसलिए बिकता है कि वेस्टर्न वॉच कंपनी बनाने वालों ने यह कसम खाई हुई है कि हम लोगों के लिए अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन, बढ़िया से बढ़िया चीजें देंगे। कीमत जो भी लगेगी हम लोगों से लेंगे।
कीमत ज्यादा हो तो हो, लेकिन खराब चीज नहीं देंगे, उन्होंने यह निश्चय कर लिया। मित्रों,
इसलिए वहां यह ईमानदारी अभी भी बनी हुई है। वेस्टर्न वॉच कंपनी की जो घड़ियां बनकर आती हैं, उन्हें पहले एक साल तक जांचा परखा जाता है। वे उनकी दीवारों पर टंगी रहती हैं और इंजीनियर एक साल तक उनकी निरख परख करते रहते हैं। 24 घंटे में अगर एक सेकेंड का भी फर्क पाया जाता है, तो घड़ी को उतार लिया जाता है और फिर से फैक्ट्री में भेज दिया जाता है।
ये फिर से रिबिल्ट होती हैं, बनाई जाती हैं।
बनाने के बाद में फिर टांग दी जाती हैं और देखा जाता है कि एक साल तक वे बिना एक सेकंड का फर्क किए चली कि नहीं चली। इसके बाद में देख लिया कि अगर घड़ी सही है तो उसको रिलीज करते हैं, बेचते हैं। अगर वह घड़ी चालू नहीं होती है और 2-3 साल तक सही नहीं होती है, तो उसको फिर गला देते हैं और फैक्ट्री में गला करके दूसरी बना देते हैं। लोहे को तोड़कर खराब कर देते हैं और कबाड़ में डाल देते हैं।
उनका यह विश्वास है कि किसी के साथ में धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी आदमी को खराब चीज नहीं देनी चाहिए।
खराब चीज देना इंसान की इंसानियत का अपमान है और तिरस्कार है।
मित्रों,
आदमी की सबसे बड़ी इज्जत इस बात में नहीं है कि उसके पास मकान है कि नहीं है, मोटर है कि नहीं है, यह इज्जत की बात नहीं है। आदमी की इज्जत इस बात में है कि उसने अपने फर्ज और कर्तव्यों को निभाया कि नहीं निभाया, दूसरों के साथ उसने शराफत और भलमनसाहत का व्यवहार किया कि नहीं किया। आदमी की इज्जत का पॉइंट यही है और इज्जत की बात यही है। भगवान के सामने अपनी इज्जत साबित करने का पॉइंट यही है और कोई पॉइंट नहीं है।
मित्रों,
व्यक्ति जिससे महान बनता है, योगी बनता है, तपस्वी बनता है, चमत्कारी बनता है और वरदान देने वाला बनता है, सिद्ध बनता है और संत बनता है, वह भी वहीं से बनता है। अगर हम अपनी जबान में सिद्धि पैदा करना चाहते हैं, तो हमको झूठ बोलना बंद करना चाहिए। जो चीजें हमारे खाने के योग्य नहीं है, उन्हें खाना बंद करना चाहिए। बेईमानी का, हराम का पैसा खाना बंद करना चाहिए। लोगों का दिल दुखाना बंद करना चाहिए।
मित्रों, आप लोगों का दिल दुखाने वाला वचन मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। जो चीजें हमारे खाने लायक नहीं है, उनको मत खाइए। हराम का पैसा मत खाइए, मत इस्तेमाल कीजिए।
बस इस जबान को इन 4 योगाभ्यासों से कंट्रोल कर लीजिए, फिर देखिए कि आपकी जबान में सिद्धि आती है कि नहीं आती है, चमत्कार आता है कि नहीं आता है,
सरस्वती सिद्ध होती है कि नहीं होती है,
राम का नाम सिद्ध होता है कि नहीं होता,
हनुमान का नाम सिद्ध होता है कि नहीं होता, चरित्रनिष्ठा और व्यक्तित्व परिष्कार का दे शिक्षण।
आपने तो अपनी जबान गंदी कर रखी है और आप राम का नाम उच्चारण करते हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, हनुमान जी का नाम उच्चारण करते हैं। जबान गंदी है तो क्या करेगी गायत्री और क्या करेंगे हनुमान जी? इनमें से कोई सिद्ध होने वाली नहीं है। गंदे नाले में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, गंगा जल भी उसी तरह का हो जाएगा। आपने तो अपनी जबान को तो ऐसा बना रखा है जिस तरह से गंदा नाला होता है। अगर इस गंदी जबान से हनुमान जी का नाम लेंगे तो वह भी इसी में गिरेगा और इसी में मरेगा, और अगर आप गंगा जल डालेंगे तो वह भी इसी में गिरेगा और वह भी नष्ट होगा।
मुंह को साफ करिए, फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है।
आपका बर्तन तो गंदा रखा हुआ है, उस गंदे वाले बर्तन में आप गंगा जल लेकर के आएं या दूध लेकर आएं, आपका दूध फटेगा ही, दूध सही नहीं रहने वाला है।
पहले बर्तन साफ करके लाए, तब इसमें दूध गर्म करिए। मित्रों,
अध्यात्म का यह रहस्य और अध्यात्म का सार हमें हर जगह बताना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि हम आप लोगों को चरित्र निष्ठा सिखाने आए हैं, हम आप लोगों को भलमनसाहत सिखाने आए हैं, सज्जनता सिखाने आए हैं।
सज्जनता और भलमनसाहत जब तक नहीं आएगी, व्यक्ति का उत्कर्ष नहीं हो सकता, समाज का उत्कर्ष नहीं हो सकता, परिवार का उत्कर्ष नहीं हो सकता, नई पीढ़ियां अच्छी नहीं बन सकती,
आदमी सुख और शांति से नहीं रह सकता, आदमी के व्यक्तिगत एवं भौतिक जीवन में तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। उन्नति नहीं हो सकती, फिर चाहे कितना ही भजन पूजन क्यों न किया जाए। इसलिए हमको लोगों का शिक्षण करना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि हमारे धर्मशास्त्रों और वेदों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी धारा नंबर 2 है यमुना, और धारा नंबर 3 कौन सी है?
सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती अध्यात्म की यही 3 धाराएं हैं। गायत्री